अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामदी के साथ और मैं हूं नदा समीर। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू रहेगा हज और ईद अल अज़हा। हम में से अक्सर अफराद जब हज के लिए जाते हैं तो ये इबादत महज जिस्मानी लिहाज से अदा कर देते हैं। हमें नहीं पता होता कि हज के मनासिक के पीछे क्या फलसफा कार फरमा है। इसी तरह जब कुर्बानी की बात आती है तो हम सुन्नत इब्राहिमी कहकर यह फरीजा अदा करते हैं। हमें नहीं पता कि हज और कुर्बानी का आपस में क्या ताल्लुक है। इसी पर बात करेंगे अपने बहुत मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। गामदी साहब अस्सलाम वालेकुम,
खैरियत से
हैं आप? गामदी साहब फलसफे पर तो बात करेंगे हज के, मगर पहले बताइए अब हज की तारीख के बारे में आप कुछ बताएंगे। क्या हजरत आदम के बाद और हजरत इब्राहिम से पहले भी हज हुआ करता था?
इबादत जितनी भी हैं
जी
ये पदाही से मौजूद है किसी न किसी सूरत में। उसकी वजह यह है कि इंसानों के बाहमी ताल्लुकात में तो तब्दीलियाँ होती रहती हैं। कबायली तमद्दुन में ताल्लुकात और नौइयत के थे, जागीरदाराना तमद्दुन में और नौइयत के ताल्लुकात हुए, फिर सनती माशरा पैदा हुआ उसमें ताल्लुकात की नौइयत फिर बदल गई, और अब टेक्नोलॉजी के इनकलाब के बाद हमारे ताल्लुकात में फिर तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला की जो शरीयत इंसानी मामलात से मुतल्लक होती है उसमें भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। यानी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो शरीयत दी गई इज्तिमाई मामलात से मुतल्लक उससे बहुत कुछ मुख्तलिफ है जो रसूलुल्लाह सल्लम के ज़रिए से दी गई। लेकिन इबादत एक ऐसी चीज़ है कि जो इब्तिदा से यकसा है, यानी इंसान वही है, उसका परवरदिगार वही है, उसके साथ ताल्लुक़ की नौइयतें वही हैं। तो इसलिए इसमें सबसे पहली चीज़ ये समझ लेनी चाहिए कि इबादत असल में है क्या। देखिए बात यह है कि मैं जब अपने जज्बात एहसासात का इजहार करना चाहता हूँ तो मैं दो तरीके इख्तियार करता हूँ। मेरे पास खुदा की दी हुई ज़ुबान है, मैं उससे इजहार करूँगा। मुझे किसी से मोहब्बत है, मुझे उसका इजहार करना है। मिसाल के तौर पर माँ ही है, मैं अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ अपनी माँ से, तो उसके लिए मैं अल्फाज बोलता हूँ। बच्चों के मामले में भी यही होता है। दूसरी चीज़ यह है कि मैं बाज़ अलामती इजहार के तरीके इख्तियार करता हूँ। एक सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन होता है, ये जो हम मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, गले मिलते हैं, किसी की पेशानी चूम लेते हैं, इसी तरह से माँ के पाँव को हाथ लगा लेते हैं, ये सब क्या है? ये दर हकीकत वो चीज़ें हैं जिनसे हम एक तरह से अलामती तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमारे सामने नहीं है, गुफ्तगू और बातचीत उस तरीके से तो नहीं हो सकती। अब उसके साथ ताल्लुक़ का इजहार करना है तो इसके लिए तमाम मज़ाहिब में अगर आप देखें तो सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन का तरीका इख्तियार किया गया, अलामती इजहार का तरीका। असल मज़हब तो वही है जो खुदा का दिया हुआ है, उसमें भी शुरू से यही तरीका रहा है। नमाज को भी आप देखें दो हिस्सों में तकसीम है, एक उसके अज़कार हैं जिसमें हम अपनी ज़ुबान से कुछ अल्फाज कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, समय अल्लाह लिमन हमिदा कहते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, ये उसके अज़कार हैं। ये जो आमाल हैं, हम हाथ बांध के खड़े हो गए, हम रुकू में चले गए, हम सजदे में खड़े गए, ये क्या है? खुदा की अज़मत का जो तसव्वुर हमारे जहन में है उसका हम इज़हार करते हैं, यानी खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ का झुक कर इजहार करते हैं, सजदे में जाके इजहार करते हैं, गोया हमने अपनी पेशानी उसके पाँव में रख दी है। हज की नौइयत भी बिल्कुल यही है। इस वजह से इसके अंदर भी एक फ़लसफ़ा है जिसको सामने रखकर उसकी अलामतों को मनासिक की सूरत दे दी गई है।
वो फलसफा क्या है? जैसे कि आपने कहा कि अलामत ही है, अलामत से इजहार करना है, तो नमाज तो हम पढ़ते हैं, पाँच वक्त रोज़ा भी है, वो भी एक अलामत है अल्लाह ताला से मोहब्बत का, फिर अगर कहीं निकलना ही है तो इंसान मस्जिद तक जाता है, हज क्यों?
लेकिन मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि उसका फ़लसफ़ा समझना चाहिए क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें एक दास्तान सुनाई है और ये बताया है कि जिस वक्त मैंने आदम को बनाया तो मैंने फ़रिश्तों से भी कहा और जिन्नात से भी कहा कि वो इसके सामने सजदा रेज़ हो जाएं। ये उनका एक इम्तहान था, इसमें फ़रिश्ते कामयाब हो गए, जिन्नात कामयाब नहीं हुए। उनमें से इबलीस ने और उसके गिरोह के कुछ लोगों ने इनकार कर दिया। इबलीस ने जब इनकार कर दिया तो उस मौके के ऊपर अल्लाह ताला ने उसको तंबीह की, उसने इस्तदलाल भी किया, उसने कहा कि ये आपने क्या किया है, आपने मुझे तो आग से बनाया जो एक बर्तर उनसर है और इसको मिट्टी से बनाया है जो बज़ाहिर मुझसे हकीर है, तो आप इसको कह रहे हैं कि मैं सजदा करूं। उस मौके पर अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, तुम इम्तहान में कामयाब नहीं हुए, इसलिए अब तुम रांदाए दरगाह हो। उसका एक रिस्पॉन्स ये हो सकता था कि इब्लीस आगे बढ़ के ये कहता है कि मुझ पर मेरी गलती बाजी हो गई, मैं इससे रजू करता हूँ, मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन उसने चैलेंज दे दिया, उसने कहा कि नहीं, अब मैं मैदान में उतरूँगा, मुझे आप क़यामत तक के लिए मोहलत दें, मैं अब औलाद आदम को गुमराह करूँगा, मैं तौहीद के रास्ते पर बैठूँगा, मैं इन्हें शिर्क करना सिखाऊँगा, मैं इन्हें रिश्ता रहम को तोड़ना सिखाऊँगा, और मैं उन रास्तों पर इनको ले जाऊँगा कि जिसके नतीजे में ये जन्नत को खो बैठेंगे और हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाएंगे। ये जो चैलेंज है असल में इसी से वो कश्मकश पैदा होती है जिसमें हमारी सारी ज़िंदगी गुजरती है। यानी एक जंग है जो हमारे और इब्लीस के दरमियान वो हमारे बातिन में भी है, वो हमारे ज़ाहिर में भी है, उसके साथ एक जंग, एक कश्मकश बरपा है। एक तरफ खुदा है, उसने उस चैलेंज को कबूल किया है, दूसरी जानब इब्लीस है जिसने चैलेंज दिया है। इससे एक आप समझ लीजिए कि मानवी नौयत की जंग वजूद में आ गई है। हम ये जंग शब रोज़ करते हैं, ये असल में है क्या, ये खैर और शर की जंग है। यानी मेरा बातिन मुझसे ये तकाजा करता है कि मैं नेकी इख्तियार करूँ, मैं रहम दिली इख्तियार करूँ, मैं शफकत इख्तियार करूँ, मैं इंसानों के हुकूक अदा करूँ, मैं उनकी जान माल आबरू की हिफाजत करूँ। इब्लीस मुझसे ये चाहता है कि मैं दूसरे रास्ते पर चलूँ। ये दुनिया के अंदर जो कुछ भी आपको ख़राबी नज़र आती है, गले कट रहे हैं, लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, आबरूएँ लुट रही हैं, माल मारे जा रहे हैं, या लोगों के साथ कोई और इस नौयत की ज़्यादती हो रही है, उनके हुकूक तलफ हो रहे हैं, तो ये असल में वही जंग है। इसी जंग और इसी कश्मकश में हमको कामयाब होना होता है। यानी अल्लाह के पैगंबर किस लिए आए हैं, वो इस कश्मकश में कामयाबी का रास्ता दिखाने के लिए आए हैं कि कहीं हम अपनी आखरत को खो ना बैठें। अब इब्लीस के साथ ये जो कश्मकश है, इसको एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन दिया है। यानी यूँ समझिए कि जैसे ये पूरी की पूरी जंग आप अलामती तौर पर करते हैं, तो असल में इब्लीस के खिलाफ जंग का अलामती इजहार है हज,
पूरा का पूरा
हज यही है। देखिए बिल्कुल ऐसे आप इसकी तस्वीर अपने ध्यान में लाएं कि अल्लाह ताला एक जगह मौजूद है, वो अपने बंदों को कहते हैं कि आप आइए हम इब्लीस के खिलाफ जंग करने निकले हैं, तो आप जवाब में कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, हाज़िर हो गए ना, हम हाज़िर हो गए हैं। अच्छा, इस जंग के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वो क्या है? जब एक मुजाहिद मैदान में उतरता है तो अलायक होते हैं, बीवी है, बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं, ज़िंदगी है, उसका कारोबार है, इन सब को आप छोड़कर उठ खड़े होते हैं कि मेरे खुदा ने मुझे पुकारा है और मैं उस जंग के लिए जा रहा हूँ। उसकी अलामत है आपका अहराम, यानी आपने दुनिया के सारे लिबास उतार दिए और एक बिल्कुल सादा दो चादरें ओढ़ ली और आप लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक कहते हुए वहाँ चले गए। वहाँ जाके अगर आप देखें तो आप एक वादी में जाकर, जो मिना की वादी है, वहाँ पर बिल्कुल उसी तरह पड़ाव डाल देते हैं जिस तरह एक फ़ौज पड़ाव डालती है। उसके बाद वहाँ से आप निकलते हैं और निकल के आप अरफात में जाते हैं, वो माबत का कायम मुकाम है, क्योंकि बहुत लोगों को जमा होना था तो उनको बैतुल्ला में वापस नहीं लाया गया। वहाँ आप क्या करते हैं, वहाँ खड़े होकर दुआ करते हैं, जैसे कि आप मैदान जिहाद में उतरते वक्त दुआ करते हैं। वापस आते हैं तो फिर रास्ते में पड़ाव डालते हैं, वहाँ फिर एक बार दुआएं करते हैं और आके क्या करते हैं, वो जो अलामतें बनी हुई हैं इब्लीस की, उनको कंकर मारते हैं और उसके बाद कुर्बानी करके ये बता देते हैं कि अगर इस जंग में जान भी देनी पड़ी तो हम दे देंगे। कुर्बानी क्या है, दर हकीकत तो इस बात की अलामत है। तो ये सारी की सारी जो है, ये इब्लीस के खिलाफ जो कश्मकश बरपा है हमारी ज़िंदगी में, उसका एक सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन है, उसकी एक तमसील है। ताकि क्या हो, होता यह है कि जिस वक्त किसी चीज़ को आप अलामती इजहार में डाल देते हैं और उससे किसी कौम को या किसी फ़र्द को गुजारते हैं तो वो उसके जहन का हिस्सा बन जाती है। तो आदम और इब्लीस के दरमियान जिस कश्मकश से दुनिया की इब्तदा हुई थी, उसी को दर हकीकत सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन में अदा किया गया है, उसकी तमसील है हज। तो इस वजह से ये यकीनन पहले ही दिन से कायम हो गया।
सही, गांधी साहब उस पर भी होंगे, लेकिन पहले फिर ये बता दें कि जब हम लाखों की तादाद में ये जाके तमसील और इब्लीस को शिकस्त देने की बात करते हैं और अपने दिल में वो याद ताज़ा करते हैं, वापस आकर फिर इब्लीस हम पे हावी हो जाता है।
उसकी वजह यह है कि हम असल में इस रूह को समझे बगैर जाते हैं। यानी बात यह है कि मैंने तो कई लोगों को जब ये बताया कि ये असल में इब्लीस के खिलाफ हमारी कश्मकश की तमसील है, आप इस जंग के एक मुजाहिद की हैसियत से आए हैं, आप यहाँ पर आपने खात्मा करना है उसको कंकर मार कर, और ये दरहकीकत कंकर क्या है, ये वही पत्थर है जो हमको हर रोज़ मारने पड़ते हैं इब्लीस को, तो इसको यहाँ पर एक सिंबॉलिक ताबीर दे दी गई है। तो लोगों ने कहा ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात है। यानी हमारा तो ख्याल ये था कि बस अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, हमने जा कंकर मार देने, हमने जाके आराम बांध लेना है। उसके अंदर ये जो पहलू है, ये उनको उस तरीके से याद भी नहीं कराया जाता। तो वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल वही करते हैं कि जिस तरह आदमी बेसोचे समझे कुरान पढ़ता है। आप देखिए हमारे मुल्क में बेशुमार लोग हैं, वो तलावत करते हैं, सुबह उठ के तलावत करते हैं, लेकिन ये कि वो कुरान में क्या लिखा हुआ है उससे वो वाकिफ़ नहीं होते। ऐसा ही मामला असल में बहुत सी इबादत के साथ हो जाता है। अब रोज़े को देख लें, रोज़ा असल में आपको मुजस्सम इताअत बनाता है, यानी वो आपको याद कराता है कि आप खुदा के बंदे हैं और आपको जब कभी भी खुदा के हुक्म के खिलाफ कोई तरगीब सामने आए तो उसका मुकाबला करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम रमज़ान के फौरन बाद भूल जाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि हम उस रूह को बार बार याद नहीं दिलाते असल में ये चीज़ क्या है जो आप करने जा रहे हैं, ये हमारे यहाँ ज़्यादा मौजू नहीं होता।
अच्छा गांधी साहब, फिर तारीख पे एक मरतबा जाऊँगी कि आपने कहा कि हज़रत इब्राहिम से पहले भी यकीनन होती होगी, तो काबा तो तामीर हज़रत इब्राहिम ने किया, तो उससे पहले हज कहाँ?
दो नुक्ता नज़र है इसके मामले में। एक मुहक्किकीन का नुक्ता नज़र ये है कि ये पहले भी इसी जगह मौजूद था, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से था, और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी पुरानी बुनियादों पर इसको उठाया है। पुरानी बना दें, उनको तलाश करने के लिए कहा गया और उन्होंने जाके उन पर ये इमारत उठाई।
अच्छा।
दूसरा नुकता नज़र ये है कि उन्हीं से इनकी इसकी पैदा हुई, ये पहली बार यहाँ माबद उसी मकसद के लिए बनाया गया। तो ये दोनों नुकता है नज़र तारीख में मौजूद है। इसमें चूँकि हमारे पास कोई हतमी चीज़ नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला बता देते या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते तो फिर हम हतमी तौर पर कह सकते। बहरहाल जो मालूम मारूफ तारीख है वो हज़रत इब्राहिम से शुरू हो रही है।
चगंदी साहब, छोटे छोटे लोगों के सवाल हज के हवाले से आते हैं, उसके बारे में पहले बता दें, शायर अल्लाह से क्या मुराद है?
शईरा की जमा है शायर, शईरा कहते हैं अलामत को।
ठीक,
ये वही चीज़ है जो मैंने आपसे बयान की, इसीलिए इनको शायरुल्लाह कहा जाता है, यानी कुछ हकीकतें हैं जिनके ये सिंबल हैं, उनकी अलामतें हैं। तो अंग्रेजी जुबान में जो लफ्ज़ सिंबल आप बोलते हैं अरबी में उसको शईरा कहते हैं, उसी की जमा शायर है।
अच्छा, अब दीन में अलामतों के ऊपर आप मज़ीद हमें बताएंगे, खुसूसन इस्लाम में अलामतों का क्या हैसियत है?
देखिए, हमारी ज़िंदगी में इसकी बड़ी हैसियत है। आप ये देखिए, ये दो गज़ कपड़ा होता है जो झंडा है आपका, आप इसको लहराते हैं और उस मौके के ऊपर आपके क्या जज्बात होते हैं, यानी वो हमारे असल में पूरे कौमी वक़ार की अलामत बन जाता है। चंद अल्फाज हैं तराने के। हम उसमें एहतराम में खड़े हो जाते हैं। इंसानी शख्सियत बुनियादी तौर पर महज अकली शख्सियत नहीं है, इसके साथ ये एक नफ्सियाती वजूद भी है और ये अपने गिरदो पेश से मुतासर होता है। तो अलामतें बड़ा किरदार अदा करती हैं, यानी मैं खुद हैरान रह गया इस पर। मैंने ये वाक़या कई बार सुनाया है कि मैं जब पहली मरतबे बाहर गया और वहाँ मलेशिया के सफारतखाने में यौम पाकिस्तान की तकरीब में मुझे जाने का मौका मिला, तो मैं कोई इस तरह के लोगों में से नहीं होंगे जहाँ रोएंगे वहाँ रोएंगे, यानी किसी मौत के ऊपर भी शायद कोई दो आंसू आ गए हों। अचानक जब पाकिस्तान का झंडा लहराया गया तो मैं बिल्कुल ज़ारो कतार रो रहा था। ये जो गैर मामूली ताल्लुक होता है अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ये मेरी नफ्सियात में उतरा हुआ है, हर इंसान की नफ्सियात में उतरा हुआ है। आखिर क्या वजह है? देखिए, हमें अचानक इत्तला मिलती है कि एक बड़ा हादसा हो गया, उसमें 200 लोग मारे गए, हम अफसोस करते हैं, थोड़ी देर बाद ज़िंदगी मसरूफ हो जाते हैं। यही इत्तला अगर अपनी माँ के बारे में मिले, यही बाप के बारे में मिले, शौहर के बारे में मिले, बीवी के बारे में मिले, तो कैसा इस्तराब पैदा होता है? इसका मतलब यह है कि खुदा ने हमारे दिल के अंदर कुछ करीबी ताल्लुकात हैं जिनके लिए बड़ा गैर मामूली इस्तराब रखा है, और ये इस्तराब हम हर हाल में इसका इजहार करते हैं। इस इजहार के लिए भी अगर आप देखें तो अलामतें ही हैं, मुसाफा अलामत है, मुआनका अलामत है, और बहुत से मोहब्बत प्यार के इजहार के तरीके हैं, वो सब के सब अलामत हैं जितने भी हैं। तो अलामतों की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है, यही अलामतें हैं जिनको फिर इबादात की सूरत दे दी गई।
सही। अच्छा, हज की अलामतों की शरह आप फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें कुरान और सुन्नत में इतनी वाज़ह तौर पर इसकी वजाहत क्यों नहीं की गई? इसके इस सवाल का जवाब मैं आपसे दूंगी एक छोटे से वक्फे के बाद, आप कहीं जाइएगा नहीं। प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज हम गुफ्तगु कर रहे हैं हज के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से। गांधी साहब, आपसे पहले मैंने पूछा था कि हज के अलामतों की शरह कुरान और सुन्नत में दो टोक तौर पर क्यों नहीं की गई?
उसकी वजह यह है कि ये असल में कदीम से चली आती है बातें, यानी हमारे यहाँ लोगों का आम तसव्वुर यह है कि जैसे दीन की इब्तिदा कुरान मजीद से हुई है, कुरान मजीद दीन की आखिरी किताब है, तो ये सारी चीज़ें इससे पहले मौजूद थी। कुरान मजीद में तो नमाज की कोई रकतों का भी जिक्र नहीं है, उसकी तफसीलात भी नहीं है, रोज़े के बारे में भी कोई बड़ी तफसीलात नहीं दी गई, बल्कि एक पहले से मालूम मारूफ चीज़ है, इसको बयान कर दिया गया है। कुरान पूरी तारीख बताता है, वो ये कहता है कि हज की इब्तिदा उसी वक्त हो गई जिस वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ आए, वो ये बताता है नमाज की इब्तिदा भी उसी वक्त हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी लोग नमाज पढ़ते थे, पहले भी रोज़े रखते थे, पहले भी हज करते थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लम ने बेसत से पहले, यानी जब आपको पैगम्बरी दी गई उससे पहले हज किया है, और अरब पहले भी हज इसी तरीके से करते
थे।
तो इस वजह से ये मालूम मारूफ चीज़ें थी, और ये इतनी वाज़े हैं अगर आप गौर करें, यानी आप आखिर में कंकर मार रहे होते हैं, वहाँ शैतान की अलामतें बनी हुई हैं। तो ज़रा सा गौर करने के नतीजे में सारी बात समझ में आ जाती है कि ये हकीकत में एक जंग है, जिहाद है, जिसमें हम उतरे हैं, हमने आके अपने रब की आवाज़ पर लबैक कही है, पड़ाव डाला है, जैसे फ़ौज गर्दश करती है उसी तरीके से हम ये सब काम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। इबादत को असल में उन अलामतों में डाल दिया गया है, दुआ करके वापस आके कंकर मार के कुर्बानी देके फारिग हो जाते हैं।
सही। अच्छा गांधी साहब, हज के लाजमी मनासिक और गैर लाजमी मनासिक भी हैं, इस बारे में?
हज के जो लाजमी मनासिक हैं उनमें सिर्फ सही शामिल नहीं है, यानी जो आप सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं,
सही
वो है जिसके बारे में कुरान ने वजाहत कर दी है कि वो एक नफल इबादत है, और नफल इबादत यही होती है कि जिसमें आप अगर करते हैं तो आपको अजर मिलता है, अगर किसी वजह से छोड़ना पड़ जाए तो उसके ऊपर कोई मुआवजा नहीं,
यानी कि अगर सही नहीं की तो भी हज कबूल है,
उम्रा भी हो जाएगा, हज भी हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, मनासिक हज के कौन कौन से लाजमी अज्जा आपने बता, लाजमी अज्जा क्या हैं?
ये हज में तो ये होता है ना कि आप मीना में जाते हैं, वहाँ क्याम करते हैं, सुबह उठ के आप अरफात में चले जाते हैं, अरफात में वकूफ़ होता है, वहाँ कोई और काम नहीं होता, यानी आप खड़े होकर दुआ करते हैं अपने अल्लाह ताला से, दुआ करते हैं और फिर मगरिब तक कमोबेश दुआ करते रहते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, वहाँ से वापस आके आप दोनों नमाज़ें मिला के पढ़ते हैं, मुजदलफा में रात को क्याम करते हैं, आके फिर मना में कंकर मारते हैं, उसके बाद कुर्बानी करते हैं, बाल मुंडवा देते हैं। ये असल में पुरानी अलामतें हैं, ये बाल मुंडवाना मिसाल के तौर पर। इसी तरह जो माबत के फेरे हैं जिसको आप तवाफ़ कहते हैं, यानी जब कुर्बानी की जाती थी कदीम ज़माने में, आपने देखा होगा ये हिंदुओं के यहाँ अब भी आप कहें शादी होती है तो फेरे लिए जाते हैं, यानी ये हकीकत में अपने आप को जैसे वहाँ आग को मरकज़ बना लिया जाता है, हमारे यहाँ माबत को मरकज़ बनाया जाता है, यानी बैतुल्ला एक मरकज़ की हैसियत रखता है। तो जब पुराने ज़माने में कदीम ज़माने में कुर्बानी की जाती थी तो आप कुर्बान जिसको करते थे उसको माबत के सामने फेरे दिलाते थे। ये बिल्कुल वही चीज़ है, उसी सिंबल को कायम रखा गया है, गोया आपने अपने आप को उस पर निसार कर दिया, आपने जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ कदीम ताबीर है वार दिया, तो बिल्कुल यही सूरत होती है कि आप उन फेरों के ज़रिए से ये करते हैं। ये जो माबत के गिर्द भी फेरे लगाए जाते हैं ये बैतुल्ला का तवाफ़ है, माबत के सामने भी फेरे लगाए जाते हैं वो सही है।
सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, हमारे दोस्त हजरात भी जाते हैं हज के लिए उमरे के लिए, बार बार चूंकि हम सादगी की बात कर रहे हैं और कि अल्लाह ताला के पास सब एक तरीके से पहुँचे, हम देखते हैं कि अब हज भी एक स्टेटस सिंबल बन गया है, इसमें एक दर्जा आम लोगों का है जिसमें गरीब सारी उम्र की जमा पूंजी जमा करके जाते हैं, फिर जो कि उमरा का तबका है VIP हज होता है, VVIP हज होता है कि आप खाने काबा के सामने आपको होटल मिलेगा, या आप लोग तस्वीर अपनी डालते हैं कि हम क्लॉक टावर मक्का में ठहरे हुए हैं, हमारे रूम से जो है ये खाने काबा का व्यू नज़र आ रहा है और होटल में अजान दी जा रही है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं, लोग यहाँ पर भी अपनी फजीलतें जो हैं वो महसूस करते हैं?
देखिए ये बड़ी अफसोसनाक बात है, ये फ़र्क तो होगा, आप सफ़र करते हैं किसी भी मकसद के लिए तो उसमें आपके पास अगर माली हालात आपके अच्छे हैं तो उसका ज़हूर हो जाएगा, लेकिन उस ज़हूर को नमूद बना लेना, उसको नुमाइश बना लेना, उसको आप लोगों को दिखाने के लिए इस्तेमाल करें, तो ये तो बड़ी ही पस्ती है, ज़हनियत है। इससे हर इंसान को बुलंद होना चाहिए, यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि हम अपने लिबास में, रहन सहन में, हर चीज़ में इस बात का लिहाज रखें कि वो लोगों के लिए नुमाइश की चीज़ ना बने। एक हदीस के अंदर इसको लिबास शोहरत कहा गया है, यानी आप लोगों की निगाहों में अपने आप को बड़ा करने के लिए बाज़ इकदाम करते हैं। लेकिन जहाँ तक कि इंसान का ताल्लुक है, उसके माली हालात ज़ाहिर है उसके सफ़र पर भी असरअंदाज़ होंगे, रहन सहन पर भी।
कोई पाबंदी नहीं है कि आप मीना पे खाक के बिस्तर पर सो रहे हैं या आपके लिए बाकायदा बिस्तर लगाया
है? नहीं, वहाँ तो यही करना पड़ेगा। देखिए जिस वक्त आप हज के लिए निकल खड़े होते हैं तो इस वजह से वहाँ तो बड़ी सख्ती के साथ, वहाँ तो आपको खाकसार होना है, उसी आप
वहाँ मीना में भी चूंकि AC टेंट्स भी होते हैं और प्रॉपर बिस्तर भी लगाए जाते हैं, इसी वजह से पूछ रहे हैं।
ये किसी हाल में भी मुनासिब नहीं है,
नहीं
ये आपने सफ़र जैसे भी कर लिया, आपने कर लिया, आपने कहीं क्याम करना है तो आपने कर लिया, लेकिन जिस वक्त आप उस इबादत में उतरते हैं तो फिर सबके लिए एक ही निज़ाम होना चाहिए। वहाँ पर कोई इमारतें बनाना, वहाँ पर कोई इस नौइयत का फ़र्क पैदा करना, ये मेरे नज़दीक किसी हाल में भी ठीक नहीं है। वहाँ तो सबको एक सांचे में डल जाना चाहिए, लिबास आपका लिबास एक कर दिया गया, आपका रहना एक कर दिया गया, आपका उठना एक कर दिया गया, आपका बैठना एक कर दिया गया। वहाँ पर तो अगर कोई ट्रेन आप चलाते हैं तो फिर वो सबके लिए है, वहाँ कोई बस है तो फिर वो सबके लिए है, ना वहाँ सवारियों में फ़र्क करना चाहिए, ना रहन सहन में फ़र्क करना चाहिए, ना खाने पीने में फ़र्क करना चाहिए, उसको बिल्कुल एक सतह पर लाना चाहिए। शाह और गिदा, अगर बादशाह भी कोई हज करने के लिए गया है तो वो उसी जगह मीना में जाके अपना बिस्तर लगाएगा, उसी जगह बैठेगा, अरफात में उसी तरह जाकर खड़ा होगा, यानी इसमें कोई तफावत या तफरीक किसी हाल में नहीं होनी चाहिए।
बहुत खूब गांधी साहब, ये भी फरमाएगा, कहा जाता है कि जो मैदान अरफात में हाजी गया है वो अपने तमाम गुना बख्शवा के वहाँ से निकलता है, इसीलिए हमने अक्सर लोगों को देखा है कि बार बार हज करते हैं, उनको पता है कि वो मिलावट कर रहे हैं या गैर मामूली रुकूम पे अपनी अशिया बेच रहे हैं जो कि दुरुस्त नहीं है, मगर उनका मकसद ये होता है कि हम फिर एक दफ़ा हज करके आएंगे फिर हमारे तमाम पुराना अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे?
पहले तो एक बुनियादी बात समझ लीजिए कि ये जो हुकूक लिबात से मुतल्लक गुनाह होते हैं
उसका
ये कभी माफ़ नहीं होते हैं, इनके लिए आपको तलाफी करनी पड़ती है। जब आपने मिलावट की है तो असल में आपने दूसरे आदमी के साथ ज्यादती कर ली है, आपने उसका हक तलफ कर लिया है, ये आपको अदा करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। रिश्वत आपने ले ली तो वापस करनी पड़ेगी, यानी ये नहीं हो सकता कि आपने किसी गरीब के प्लॉट पर कब्जा कर लिया और आप जाके हज कराएं उमरा कराएं ये माफ़ हो जाएगा। हुकूकुल इबाद जितने भी हैं उनकी माफ़ी के लिए ज़रूरी है कि आप तौबा भी करें, आप तलाफ़ी भी करें, यानी उस मामले को छोड़ें। अगर आपके पास कोई चीज़ है किसी की तो उसको अदा करें, हक तलफ किया है तो उस हक का इजाला करें, इसके बगैर इसकी माफ़ी का कोई इम्कान नहीं। बल्कि इसमें एक मज़ीद बात यह है कि क़यामत में भी आपको उस शख्स से मामला करना पड़ेगा, यानी जब लोग क़यामत में उठेंगे तो تو حقوق العباد کے معاملے میں جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ آدمی ہے, اس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی تھی, اس کو گالی دی تھی, اس کو آپ نے قتل کیا تھا, اس کے ساتھ کوئی آپ نے ظلم کیا تھا, اب اس کو راضی کیجیے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہاں آپ کے پاس دینے لینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, آپ کے پاس صرف نیکیاں ہوں گی جو آپ دے کے اپنی جان چھڑا سکیں گے, اس کے پاس برائیاں ہوں گی, اگر وہ نہیں راضی ہوگا تو آپ کو لینی پڑیں گی. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, اس لیے اس کا تو ہر حال میں لوگوں کو واضح طور پر اپنے ذہن سے اس تصور کو نکال دینا چاہیے کہ وہ اپنے یہ گناہ معاف کرا لیں گے. اللہ تعالیٰ سے متعلق جو گناہ ہیں وہ یقیناً معاف ہو جاتے ہیں, وہ بہت کرم کرنے والا ہے. آپ حج کرتے ہیں, آپ بڑا سفر کر کے جاتے ہیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ سے متعلق جو گناہ ہوتے ہیں وہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے. انسانوں سے متعلق گناہ, آپ نے کسی کی غیبت کی ہے, آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے, کسی کو فریب دیا ہے, یہ تو آپ کو اس آدمی سے معاف کرانا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے.
وہ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟
اس لیے یہ کوئی ایسا گناہ کہ جس کی تلافی ضروری ہے وہ نہ حج سے معاف ہوتا ہے نہ عمرے سے معاف ہوتا ہے. ہاں ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی, اس نے چاہا کہ وہ تلافی کرے, اس کو موقع نہیں مل سکا, تو اس کے بارے میں وہ توقع کر سکتا ہے کہ وہ اپنے رب سے درخواست کرے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے, میں چاہتا ہوں تلافی کرنا, میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی کسی ایسی مجبوری میں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر لیں, ورنہ یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے معاملے میں یہ تصور نہ رکھیں.
اچھا ہم سب حج فرض عبادت ہے, ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے, اور بہت سارے لوگ اپنی آخر عمر کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ شاید تمام گناہ اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے تو ایک ساتھ دھلوا کرا لیے جائیں, ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جانا چاہیے؟
دیکھیے یہ تو تب ہو کہ جب مجھے یا آپ کو ضمانت دی گئی ہو کہ ہم کب تک جئیں گے.
بالکل
موت کا فیصلہ تو اگلے لمحے میں ہو سکتا ہے, تو اس وجہ سے جتنی بھی عبادات ہیں حج کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کے اندر استطاعت پیدا ہو گئی تو پھر وہ آپ پر فرض ہو چکا ہے, اس کو جتنی جلدی ممکن ہو ادا کر لینا چاہیے اور اس کی صحیح روح کے ساتھ ادا کرنا چاہیے.
اور اگر ایسا شخص جو استطاعت رکھتا ہو نہیں گیا, یہی سوچ کے کہ نیت تو ہو اس کی جائے گا لیکن وہ اس نے نہیں ادا کیا اور اس کا انتقال ہو جائے, تو
اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات کہی کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں گیا, یعنی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. رکاوٹیں دیکھیں کئی ہو سکتی ہیں, اس کے پاس مال نہیں ہے یا اس کی کوئی ایسی ذمہ داری ہے جس کو چھوڑ کر جانا ممکن نہیں, آپ کے بعض وقت والدین معذور ہوتے ہیں, کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, تو اگر بغیر کسی عذر کے وہ حج کے لیے نہیں گیا, یعنی اس نے پرواہ نہیں کی نا پھر کہ ٹھیک ہے پیسے بھی ہے سب کچھ ہے میں فارغ بھی ہوں لیکن کیا فرق پڑتا ہے حج کیا چیز ہے, تو پھر یہ فرمایا کہ پھر اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا.
بڑی بات,
تو یہ بہت بڑی بات.
گاندھی صاحب استطاعت کی وضاحت کریں گے, استطاعت کس کے لیے کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس کے اوپر فرض ہے, ورنہ ایک شخص ہے جس کے پاس مال جمع ہے اور اس کی بچیاں ہیں, جس کو پتا ہے کہ آگے جا کے اس کو شادی کرنی ہے اور اس کو اس مال کی ضرورت پڑے گی, ایسے شخص پہ بھی حج لازم ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس کی ناگزیر ضرورتیں ہیں ان سے زائد رقم ہوگی تو وہ حج کرے گا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنا کھانا پینا بند کر دے, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس کو ایک چھت چاہیے تو وہ اس سے پہلے حج کرائے جا کے. تو یہ کوئی آدمی اپنے طور پر فیصلہ کرنا چاہے تو کرے, ورنہ ہمارے دین میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی ضروریات جو ناگزیر ضرورتیں ہیں, یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ عیش و عشرت پر روپیہ خرچ کر رہے ہیں, جو ناگزیر ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد پھر آپ حج کے لیے جائیں. اور اس میں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بڑھاپا آ جائے, جوانی میں آدمی کو ایک مشقت کی چیز ہے, 5 دن تک آپ کو ایک مجاہد کی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے, وہاں کسی قسم کی کوئی تایوش کی چیز نہیں ہونی چاہیے, وہی 2 کپڑے ہونے چاہیے, وہی بستر ہونا چاہیے, وہی زمین ہونی چاہیے, اسی طرح آپ کو کھڑے ہونا چاہیے.
جی گاندھی صاحب, حج پہ تو ہم نے خاصی گفتگو کی, اب عید الاضحیٰ پر بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کہیں جائیے گا نہیں. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. حج اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں ہم گاندھی صاحب کے ساتھ. گاندھی صاحب, عید پر آؤں گی, ایک آخری سوال حج کے حوالے سے, قرض لے کر بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حج پہ جاتے ہیں, ان کی شدید خواہش ہوتی ہے حج ادا کرنے کی.
یہ بات یہ ہے کہ آدمی کا ایک شوق ہے, جس طرح سے دنیا میں اور بہت سے کام ایسے ہیں جو وہ قرض لے کر لیتا ہے, اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میں اس کو ادا کر دوں گا, اس لیے اس کو روکا تو نہیں جا سکتا, لیکن یہ اس کے لیے ضروری نہیں تھا. یعنی حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت پابند کرتے ہیں جب کہ اس کے پاس استطاعت ہو. تو آدمی بعض اوقات ایک چیز کے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتا ہوتا ہے, اس کی آرزو ہوتی ہے, وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑا بہت کسی سے پیسے پکڑ کے چلا جاتا ہوں, میں ادا کر دوں گا. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بہت بری چیز ہے, اس کا ارتکاب اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس نے جرم کر دیا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو, بھائی اپنے شوق کو آپ اس حد تک نہ بڑھائیں, आप कोशिश यही करें कि आपकी अपनी इस्तात हो तो आप जाएं, क्योंकि इसका इम्कान है कि आप कर्ज़ ले बैठेंगे, उसको अदा करने में मुश्किल होंगी, वो ना हो कि आप किसी मुसीबत में अपने आप को डाल लें, अल्लाह ये नहीं पसंद करता।
गांधी साहब, ईद के हवाले से हज और ईद उल अज़हा के ताल्लुक पर थोड़ा सा इख्तसार से आप पहले जिक्र कर चुके हैं, वो कुर्बानी अल्लाह के कुर्बत का जरिया कैसे बनती है इस पर बताएंगे, और उसकी बड़ी ईद क्यों कहा जाता है ईद उल अज़हा को?
बड़ी ईद तो खैर हमारे यहाँ बरसगीर में कहा जाता है,
मगर
यानी उसमें चूंकि बड़ा एहतमाम होता है और 2-3 दिन तक ईद रहती है और कुर्बानी की जाती है, जानवर खरीदे जाते हैं, तो खाना पकाना बहुत होता है, तो लोगों ने उसको बड़ी ईद कहना शुरू कर दिया। वरना ये बड़ी ईद कोई मज़हबी चीज़ नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अम्बिया अलैहिस्सलाम ने इसको कोई बड़ी ईद से
ईद उल फितर की फजीलत कम हो,
जी हाँ, इसका यार मतलब नहीं है, यानी दोनों ईदें हैं। देखिए इन दोनों की तारीख भी हमें मालूम है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ आपको ये मालूम हुआ कि यहूद बहुत सी ईदें मनाते हैं। ईद मनाना ये बजाय ख़ुद इंसानी फितरत का तकाज़ा है। हमें एक मुल्क मिला तो हम यौम पाकिस्तान की तकरीब मनाकिद करते हैं, ये भी हकीकत में उसी चीज़ का ज़हूर है,
ईद खुशी का नाम।
मौसमों से त्यौहार पैदा हो जाते हैं और त्यौहार है ना एक, यानी त्यौहार बजाय ख़ुद इंसानी फितरत का एक ज़हूर है। इंसान ये चाहता है कि कुछ जमा हो, लोगों से मिले मिलाए, यानी इंसान के अंदर एक माशर्ती वजूद पाया जाता है, माशर्ती शख्सियत पाई जाती है, जिस तरह उसका इजहार मिलने मिलाने में तकरीबात में होता है, शादी ब्याह में, इसी तरीके से उसका इजहार त्यौहारों में भी होता है। त्यौहार बसा अवकात कौमी सतह पर आपको एक जगह जमा कर देते हैं, और ये मौसमों से पैदा होते हैं या आपके हालात से पैदा होते हैं। तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो वहाँ बताया गया कि इस तरह यहूद के यहाँ कुछ त्यौहार हैं, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने इनकी जगह हमारे लिए 2 त्यौहार मुकर्रर कर दिए हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। तो दोनों की हैसियत बिल्कुल बराबर है, एक में आप रोज़े की इबादत से गुजरते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, और एक त्यौहार उस मौके पर मनाते हैं जिसको ईद उल फितर कहा जाता है। गोया रमज़ान जैसा महीना आया जिसमें आपने रोज़े रखे, अल्लाह की इबादत की, उसकी बंदगी का हक अदा किया, अपने आप को उसकी इताअत के लिए तैयार किया, आप उस इबादत से कामयाब होकर गुजरे, आपको अल्लाह ने यह सआदत दी कि आप रोज़े रखें, तो आप उसकी शुक्रगुजारी में ईद मनाते हैं। यहाँ क्या किया गया, यहाँ ये यह है कि हज चूँकि एक बहुत बड़ी इबादत है, तो आप देखें कि हज के मनासिक पर हमने गुफ्तगू की तो उसमें कल्मिनेशन क्या है, मुंतहाए कमाल क्या है, कुर्बानी, यानी जब भी आप जंग करेंगे तो उसका मुंतहाए कमाल क्या है,
शहादत,
यानी आप अपनी जान दे देते हैं, तो वहाँ पर भी आखिरी अमल यही होता है कि आप कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के बाद बस फिर सिर्फ अलविदाई नौइयत के मामलात होते हैं, आप हरम में आते हैं, आके एक तवाफ़ करते हैं और घर के लिए रखते सफ़र बांध देते हैं, तो कुर्बानी उसका मुंतहा है। सारी दुनिया को वहाँ नहीं ले जाया जा सकता, किसी के पास इस्तेआत नहीं होगी, यानी हज एक बहुत बड़ा इवेंट है ना, आप समझे, सारी दुनिया से लोग जमा हुए हैं, वो उस एक तमसील का हिस्सा बने हैं, और फिर वो अपने रब के लिए शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए आ गए हैं, आखिर में उसकी आप कुर्बानी करते हैं, तो आखिरी चीज़ को लेके सारी दुनिया फैला दी जाए, ताकि आप भी जहनी और नफसियाती लिहाज से सब लोगों के साथ
शरीक हो जाएं। बड़ी खूबसूरत बात है। तो आमिर साहब, ईद थोड़ा सा मैं हट रही हूँ ईद उल अज़हा से, क्योंकि आपने यहूदियों का जिक्र किया रसूल अल्लाह के ज़माने में, तो अब क्या दूसरे मजाहिब के लोग जो त्यौहार मनाते हैं, अपनी ईदें मनाते हैं, उनके साथ उसमें शरीक हो जाना मोहब्बत बढ़ाने के लिए, इत्तेहाद के लिए, तो क्योंकि अब क्रिसमस पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो क्या ये आपको दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है?
इसका कोई ताल्लुक दायरा इस्लाम के खारिज होने से नहीं है। देखिए, हमें सिर्फ उन चीज़ों में शरीक नहीं होना चाहिए जिनके अंदर या तो मजहबी लिहाज से कोई गलत काम है, मिसाल के तौर पर हम शिर्क नहीं करेंगे, हम एक खुदा के मानने वाले हैं, तो अगर किसी मौके पर शिर्क किया जा रहा है तो हम उसमें शरीक नहीं होंगे, या इसी तरह अगर कोई गैर अखलाक की बात हो रही है तो उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। हमारा मज़हब सिर्फ 2 चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है, यानी खुदा के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए और अखलाकी हदूद की पाबंदी की जाए, हर हाल में उनका एहतराम किया जाए। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है क्रिसमस, तो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम तो हमारे भी पैगम्बर हैं, हम उनको न माने तो हम मुसलमान नहीं हो सकते, तो इस वजह से उनकी खुशी की तकरीब में शरीक ना होने की क्या वजह है। अगर हमारे हमसाए में कुछ मसीही रहते हैं, हमें उनको मुबारक भी देनी चाहिए, उनकी खुशी में शरीक भी होना चाहिए। अगर हमें उनसे कोई बात करनी है, हमारे रवाबित नहीं होंगे, ताल्लुकात नहीं होंगे, मिलना जुलना नहीं होगा, तो कैसे उनके साथ बात करेंगे? तो इसलिए मेरे नज़दीक इस तरह की चीज़ों को जो लोग मसला बना लेते हैं वो असल में माशरती और समाजी तकाज़ों को समझने में गलती करते हैं।
गांधी साहब, अभी आपने बताया कि हुजूर पाक ने कहा कि हमारे लिए, मुसलमानों के लिए 2 त्यौहार अब मुकर्रर होंगे, तो कुर्बानी का ताल्लुक तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से है, तो फिर इस ईद की इब्तिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों हुई है?
इससे पहले तो हज के मौके पर ही कुर्बानी होती थी, मुसलमान इस तरह सारी दुनिया में नहीं फैले हुए थे, वहीं हरम में लोग रहते थे, वो आते थे, हज करते थे और उस मौके पर कुर्बानी भी कर लेते थे। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरी उम्मत की तश्कील की तो इसको फैलाना शुरू कर दिया, उससे ईद उल अज़हा का एक त्यौहार
दूर दूर भी लोग होंगे जो कि नहीं,
रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेसत हुई है तो उस वक्त तो आप मक्के में आए थे, 235-36 लोग थे जिनको लेकर आप मक्के से निकले हैं, उस वक्त इतने ही लोग थे, तो वहाँ कहाँ ईद उल अज़हा मनाने के लिए आपको मराकश और इंडोनेशिया तक जाना था। जब उम्मत के फैलने का इम्कान हो गया तो आपने ये दोनों त्यौहार मुकर्रर किए, और कुर्बानी के इस अमल को भी, ये अगर आप ये देखें तो वहाँ हज हो रहा होता है, एक अजीम इबादत से लोग गुजर रहे होते हैं, हम में से कोई भी उन मनासिक की तमन्ना करता है कि हम काश जाएं वहाँ, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए इस्तेआत भी हो तो आप हर साल तो नहीं जा सकते, ये कुर्बानी की इबादत आपको हर साल उससे मुतल्लक कर देती है।
सही। अच्छा गांधी साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया तो महसूस ऐसा होता है कि हुजूर पाक से पहले हज तो वहाँ पर होता था, कुर्बानी भी आपने कहा होती थी, लेकिन ईद नहीं मनाई जाती थी वहाँ पर,
इस तरह की ईद का त्यौहार नहीं था। ईद उल अज़हा और ईद उल फितर ये दो त्यौहार रसूलुल्लाह सल्लम ने शुरू किए, यानी इससे पहले जो सुन्नत कायम थी वही कुर्बानी की सुन्नत थी जो हज के मौके पर लोग करते थे, हदी के जानवर लेकर जाते थे, आम तौर पर अरबों की बहुत बड़ी तादाद, बल्कि सारे ही लोग हज के लिए जा रहे होते थे, तो इस वजह से वहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं थी इस बात की। अभी मज़हब दीन दावत ये सारी दुनिया में नहीं फैली थी, हुजूर के बाद असल में इतने बड़े पैमाने पर इस पर शुरू हुआ, तो उसके लिए त्यौहार मुकर्रर कर दिया।
अच्छा गांधी साहब, बाज़ औक़ात आप गैर मुस्लिमों को ये बात समझाएं कि हज़रत इब्राहिम को ख्वाब आया था कि इस्माईल को कुर्बान कर दिया जाए और उन्होंने इसके ऊपर मिनोअन अमल कर दिया, तो क्या अल्लाह ताला की यही मंशा थी, क्या उनको ख्वाब की ताबीर नहीं करनी चाहिए थी? ये दूसरे लोग सवाल करते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं।
देखिए अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ जो मामला करता है, जिनको वो नबूवत के मनसब पर फाइज करता है, दो तरीक़ों से करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बात कह के बताया जाता है, इसके लिए वही का तरीका है। बाज़ औक़ात बात दिखाई जाती है, इसके लिए रोया या ख्वाब का तरीका है। यानी अल्लाह ताला हमारे अंदर असल में हमारे नफ्स में एक सलाहियत रखी गई है ख्वाब देखने की। ये सलाहियत है जिससे ये आप समझिए कि एक मीडियम है जिसको अल्लाह ताला भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो ख्वाब अल्लाह ताला ही की तरफ से दिखाया गया, लेकिन उसकी एक ताबीर थी, वो ताबीर ये थी। और आप देखें हमारे सारे ख्वाब इसी तरह होते हैं। कुरान मजीद ने ख्वाबों की हकीकत वाज़ेह कर दी है सूरह यूसुफ में, हज़रत यूसुफ़ के ख्वाब से और बादशाह के ख्वाब से और वो जो नानपुस था उसके ख्वाब से ये बता दिया कि ख्वाब क्या होता है। ख्वाब में बैने ही वो बात नहीं होती, बल्कि वो किसी हकीकत को सिम्बलाइज करती है। जब हरम बन गया तो इसके लिए ये ज़रूरत थी कि कोई अब अपने खादिम की हैसियत से इस हरम के साथ वाबस्ता हो। सैयदना इब्राहिम से ये कहा जा रहा है कि आप अपने बेटे को खादिम की हैसियत से हरम के सपुर्द कर दें, वो अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरे सपुर्द कर दें। तो ये जो सपुर्दगी का अमल है इसको कुर्बानी की शक्ल में दिखाया गया, ये ताबीर ये थी इसकी। यानी उनसे तकाजा ये किया जा रहा था कि हरम वजूद में आ गया है, ये खुदा की इबादतगाह बन गई है, ये वो अव्वलीन इबादतगाह है जो खुदा के बंदों के लिए बनाई गई, अब इस सरजमीन से खुदा के दीन को फैलना है, अब इस इबादतगाह को नमाज के लिए हज के लिए खास करने के लिए किसी शख्स की ज़रूरत है, वो आप अपने बेटे को इसके लिए खास करें।
तो यही ताबीर थी बेसिकली,
यही ताबीर।
अच्छा अब कुर्बानी में भी फ़र्क होता है, हज पर की गई कुर्बानी और घर पर या किसी और मुल्क में की गई कुर्बानी में कोई फ़र्क है?
देखिए वो कुर्बानी तो असल में वही हज की कुर्बानी है जो हम यहाँ कर लेते हैं, तो इस लिहाज से गोया हज के उस पूरे अमल में एक दर्जे में शरीक हो जाते हैं। आप देखिए कि जब कभी आप हज के लिए निकलें, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता रास्ते में कोई ऐसी रुकावट पड़ गई, कोई जंग हो गई, कोई और मामला हो गया और आप नहीं जा सकते, तो उस मौके पर कुर्बानी ही को पूरे हज का कायम मुकाम बना दिया गया। यानी आप एक जानवर की कुर्बानी कर दें, बस यही कायम मुकाम है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए थे उमरे के लिए तो कुरैश ने आपको दाखिल नहीं होने दिया, हुदैबिया के मुकाम के ऊपर आपने वहाँ कुर्बानियाँ कर दी। इसी तरीके से ये हिदायत कर दी गई कि जब कभी भी ऐसा मौका हो, आप कहीं गिर जाएं या आपका मुहासरा कर लिया जाए, आपके लिए वहाँ जाना मुमकिन न रहे, तो आप कुर्बानी कर दें। तो कुर्बानी दर हकीकत पूरे के पूरे हज को अपने अंदर समेट लेती है, ये हम पूरी दुनिया में करते हैं।
सर कुर्बानी हज के हवाले से हमने बात की कि फ़र्ज फरीज़ा है ये, और कुर्बानी नफली है या फ़र्ज़ है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप साहिब इस्तेआत हो या साहिब इस्तेआत ना हो, आप कमाने का आपका कोई भी जरिया है तो आप पर कुर्बानी फ़र्ज है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम हज पर होकर आएँ, खुसूसन ख़वातीन जिनका कोई जरिया माश नहीं हो, कहते हैं हम हज कर कराएँ तो कुर्बानी हम पर फ़र्ज है।
ये मुसलमानों के जो जुरिस्ट हैं, फुकहा हैं, उनमें सिर्फ इमाम हनीफा का ये मज़हब है, बाकी सब अहले इल्म इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि कुर्बानी एक नफल इबादत है। ये हज में भी नफल इबादत ही है, यानी हज में भी ये कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ जो आमतौर पर कुर्बानी की जाती है वो हज की कुर्बानी नहीं होती, जो लोग हज पे करते हैं, हज के लिए लोग जाते हैं, वो उम्रे और हज को एक सफ़र में जमा करने की कुर्बानी है।
अच्छा गांधी साहब, अभी ताबीर और ख्वाब से मुतालिक बात कर रहे थे तो कुरान में आया है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आपने ख्वाब सच कर दिखाया, इसका क्या मफहूम है?
बड़ी दाद दी है। देखिए बात यह है कि अल्लाह ताला ने तो ये चाहा था कि आप बेटे को मेरे सुपुर्द कर दें, ये मेरे माबत की खिदमत करें। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको बिल्कुल लिटरल मफहूम में लिया, یعنی جیسے دیکھا ویسے کر دیا. تو یہ جو عمل ہے کرنے کا یہ تو بڑا غیر معمولی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بچے کو ذبح بھی نہیں ہونے دیا, یہ مقصد بھی نہیں تھا کہ ذبح کرایا جائے, لیکن چونکہ خواب اس طریقے سے دکھایا گیا تھا تو مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ابراہیم کرتے کیا ہے. تو ابراہیم نے وہ کچھ کر ڈالا کہ جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی. تو اس پہ داد بھی دی ہے اور بڑی محبت کے ساتھ بھی کہا ہے کہ تعبیر کرنا تھی ابراہیم, تم نے تو خواب کو بالکل ایسے ہی کر دیا جیسے کہ جو کہا گیا تھا اس کے اوپر عمل کر ڈالا گیا.
اچھا, اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ ایام تشریق سے کیا مراد ہے اور اس میں پڑھی جانے والی تکبیروں کی کیا حیثیت.
یہ وہ دن ہیں کہ جن میں ہم منا میں مقیم ہوتے ہیں, یعنی جس وقت حج مکمل ہو جاتا ہے اور ہم اپنا آخری طواف بھی کر لیتے ہیں, تو پھر ہم دو دن یا تین دن وہاں گزارتے ہیں. وہ ایک طرح سے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے جنگ سے فارغ ہو گئے تو اب سب مل کے کھائیں گے اور پکائیں گے اور ملیں گے اور بیٹھیں گے اور خدا کو یاد کریں گے, تو وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. ان کے اندر چونکہ قربانیاں کی جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ لفظ ان کے لیے اختیار کر لیا گیا ہے.
عبدی صاحب, آخری بات بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ حج پر پہنچتے ہیں لیکن لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ رہ بھی جاتے ہیں, تو جو گھروں پر ہیں افراد ان کا بھی دل چاہتا ہے, کیا خاص عبادات کی جا سکتی ہیں ان دنوں میں؟
گھر کے لیے عبادت موجود ہے قربانی کی, اسی مقصد کے لیے ہے. وہ شوق سے قربانی کریں اور یہی خیال کریں کہ ہم وہاں شریک ہو رہے ہیں. جس طریقے سے وہاں ایک حج کا خطبہ ہوتا ہے, دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, اسی طرح کی دو رکعت نماز عید الاضحیٰ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بندوبست کر دیا ہے کہ وہ اگر نہیں جا سکتے ہیں تو وہ عید الاضحیٰ ہی کو اس جذبے کے ساتھ منائیں, اس کی اصل روح کے اوپر توجہ کریں. یہ دیکھیں کہ اس میں در حقیقت وہ جانور کو قربان نہیں کر رہے, وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں اس سے دریغ نہیں کروں.
اور اس کے سمبل کو سمجھ کے ادا کریں محض اسے قربانی کے طور پر.
شاعر کے معاملے میں یہی حقیقت ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ علامتیں ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے, وہ حقیقت سامنے رہنی چاہیے.
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب آپ کی گفتگو کا. آپ نے سنی آج کی گفتگو. اگر حج کو اس کے فلسفے کے تحت اس کی روح کے مطابق ادا کیا جائے تو لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں. اور میں اور آپ, ہم میں سے جو افراد آج تک حج پہ نہیں جا سکے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلائے اور ہمیں بھی یہ فضیلت حاصل ہو. مجھے دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.